Cambridge Assessment, International Education, Cambridge IGCSE, March 2023 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक प्रश्न एक से छः प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा
संवाद एक
देवियों और सज्जनों यह भारत की सबसे बड़ी और मशहूर तिहाड़ जेल है इसके बाहरी हिस्से को दो साल से एक विरासती होटल में बदल दिया गया है ताकि देश विदेश से आए सैलानी दिल्ली के दर्शनीय स्थानों की सैर करने के साथ साथ जेल में रहकर यहाँ के कई नामी कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव भी कर सकें यहाँ रहने वालों को कैदियों के साथ काम करने और खाना खाने का अवसर दिया जाता है लेकिन बाकी सब सुविधाएं पांच सितारा होटलों जैसी हैं देवियों और सज्जनों यह भारत की सबसे बड़ी और मशहूर तिहाड़ जेल है इसके बाहरी हिस्से को दो साल से एक विरासती होटल में बदल दिया गया है ताकि देश विदेश से आए सैलानी दिल्ली के दर्शनीय स्थानों की सैर करने के साथ साथ जेल में रहकर यहाँ के कई नामी कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव भी कर सकें यहाँ रहने वालों को कैदियों के साथ काम करने और खाना खाने का अवसर दिया जाता है लेकिन बाकी सब सुविधाएं पांच सितारा होटलों जैसी हैं
संवाद दो
व्यायाम घर
हेलो मैं आपकी व्यायाम शाला की सदस्य बनना चाहती हूँ
आपका स्वागत है हम दो तरह के सदस्य बनाते हैं स्वर्ण और रजत
जी उनके बारे में थोड़ा बताइए
स्वर्ण सदस्य हफ्ते में जितनी बार चाहें आ सकते हैं और रजत सदस्य हफ्ते में केवल चार बार
मैं तो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही आ सकती हूँ
ठीक है आपके लिए रजत सदस्यता सही रहेगी
धन्यवाद
व्यायाम घर
हेलो मैं आपकी व्यायाम शाला की सदस्य बनना चाहती हूँ
आपका स्वागत है हम दो तरह के सदस्य बनाते हैं स्वर्ण और रजत
जी उनके बारे में थोड़ा बताइए
स्वर्ण सदस्य हफ्ते में जितनी बार चाहें आ सकते हैं और रजत सदस्य हफ्ते में केवल चार बार
मैं तो हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही आ सकती हूँ
ठीक है आपके लिए रजत सदस्यता सही रहेगी
धन्यवाद
संवाद तीन
हेलो सरल अगले हफ्ते तालकटोरा उद्यान में होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहती थी बुरी खबर ये है कि सोमवार को होने वाली सुगम संगीत सभा तो रद्द हो गई है और मंगलवार की सभा के सारे टिकट बिक चुके हैं बुधवार और बृहस्पतिवार के टिकट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन दिनों तुम खाली नहीं हो। खैर, शुक्रवार के लिए एक प्रस्ताव है। मेरी मित्र पारुल ने उस दिन शाम को पार्टी रखी है। मैंने तुम्हारी तरफ से भी हाँ कर दी है। उम्मीद है तुम आ सकोगे। हेलो सरल, अगले हफ्ते तालकटोरा उद्यान में होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहती थी। बुरी खबर ये है कि सोमवार को होने वाली सुगम संगीत सभा तो रद्द हो गई है और मंगलवार की सभा के सारे टिकट बिक चुके हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार के टिकट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन दिनों तुम खाली नहीं हो। खैर, शुक्रवार के लिए एक प्रस्ताव है। मेरी मित्र पारुल ने उस दिन शाम को पार्टी रखी है। मैंने तुम्हारी तरफ से भी हाँ कर दी है। उम्मीद है तुम आ सकोगे।
संवाद चार।
सुदीप, तुम्हारा पक्षियों वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तुमने नीलकंठ पक्षी को चुना था ना?
जी मैम, मैंने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।
बढ़िया। तुम्हें मालूम है ना कि नीलकंठ को कुछ लोग गरुड़ भी समझते हैं।
अच्छा, ये दिलचस्प बात बताई आपने। लेकिन क्या गरुड़ नीलकंठ से बड़े नहीं होते?
हाँ, कम से कम चील जितने बड़े तो होते ही हैं।
मैम, मैंने नीलकंठ पक्षियों की संख्या के आंकड़े जुटा लिए हैं। समझ नहीं आ रहा अब मैं उनका क्या करूं।
अरे वाह, तो फिर तुम उसका एक ग्राफ क्यों नहीं बना लेते?
धन्यवाद मैम।
सुदीप, तुम्हारा पक्षियों वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तुमने नीलकंठ पक्षी को चुना था ना?
जी मैम, मैंने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।
बढ़िया। तुम्हें मालूम है ना कि नीलकंठ को कुछ लोग गरुड़ भी समझते हैं।
अच्छा, ये दिलचस्प बात बताई आपने। लेकिन क्या गरुड़ नीलकंठ से बड़े नहीं होते?
हाँ, कम से कम चील जितने बड़े तो होते ही हैं।
मैम, मैंने नीलकंठ पक्षियों की संख्या के आंकड़े जुटा लिए हैं। समझ नहीं आ रहा अब मैं उनका क्या करूं।
अरे वाह, तो फिर तुम उसका एक ग्राफ क्यों नहीं बना लेते?
धन्यवाद मैम।
संवाद पांच।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पूर्वोत्तरी राज्य असम का गर्व माना जाता है। दुनिया के 60% से ज्यादा एक सींग वाले भारतीय गैंडे यहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे गैंडा घर भी कहा जाता है। दुनिया में बाघों की सबसे घनी आबादी होने के कारण 2006 में इसे अभयारण्य भी बना दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। यह असम के दो जिलों गोलाघाट और नोआगांव में फैला है। यहां आप तरह तरह के जंगली जानवर देख सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पूर्वोत्तरी राज्य असम का गर्व माना जाता है। दुनिया के 60% से ज्यादा एक सींग वाले भारतीय गैंडे यहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे गैंडा घर भी कहा जाता है। दुनिया में बाघों की सबसे घनी आबादी होने के कारण 2006 में इसे अभयारण्य भी बना दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। यह असम के दो जिलों गोलाघाट और नोआगांव में फैला है। यहां आप तरह तरह के जंगली जानवर देख सकते हैं।
संवाद 6।
शैला, मुझे इस साल गर्मी की छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
क्यों रवि, किसी खास जगह जा रहे हो क्या?
खास? अरे भाई, सिक्किम जा रहे हैं कंचनजंगा पर चढ़ाई करने।
हाँ? पर तुम तो मालदीव्स के किसी टापू की बात कर रहे थे।
नहीं शैला, उसे अगले साल के लिए टाल दिया है। खैर, क्या तुम अपना कैमरा उधार दोगी?
हाँ, ले जाना, पर चढ़ाई के लिए सही जूते खरीदना मत भूलना।
वो तो ले भी लिए, अब बस एक बढ़िया सा बैग लेना बाकी है।
ठीक है, खूब सारी तस्वीरें भेजना।
शैला, मुझे इस साल गर्मी की छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
क्यों रवि, किसी खास जगह जा रहे हो क्या?
खास? अरे भाई, सिक्किम जा रहे हैं कंचनजंगा पर चढ़ाई करने।
हाँ? पर तुम तो मालदीव्स के किसी टापू की बात कर रहे थे।
नहीं शैला, उसे अगले साल के लिए टाल दिया है। खैर, क्या तुम अपना कैमरा उधार दोगी?
हाँ, ले जाना, पर चढ़ाई के लिए सही जूते खरीदना मत भूलना।
वो तो ले भी लिए, अब बस एक बढ़िया सा बैग लेना बाकी है।
ठीक है, खूब सारी तस्वीरें भेजना।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न 7।
शहीद भगत सिंह के लेखन और विचारों का परिचय देने वाली इस वार्ता को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह वार्ता आपको दो बार सुनाई जाएगी।
शहीद भगत सिंह को आज भी ज्यादातर लोग क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। यह कम ही लोगों को पता है कि वह गंभीर अध्येता ही नहीं, प्रगतिशील पत्रकार और अच्छे रचनाकार भी थे। हाल के कुछ वर्षों में कई प्रकाशकों ने भगत सिंह और उनके साथियों का साहित्य आम जनता तक पहुंचाया है। आम आदमी को उनके विचारों से अवगत कराने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे उनके प्रसिद्ध लेख, महत्वपूर्ण दस्तावेज और जेल नोटबुक आज लाखों पाठकों तक पहुंच चुके हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान सन 1924 में पंजाब में भाषा का विवाद चला था। उसके दौरान पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाए, इस प्रश्न पर उर्दू और हिंदी के पक्षधरों की एक बहस में भगत सिंह ने भी पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रतियोगिता के लिए एक लेख लिखा था, जिस पर उनको 50 रुपए का इनाम भी मिला था। भगत सिंह का वह लेख संदेश पत्रिका के हिंदी संस्करण में प्रकाशित किया गया था। उसमें भगत सिंह ने लिखा, किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ करती है। कबीर के साहित्य के कारण समाज में उनकी बातों का स्थायी प्रभाव दिख पड़ता है। यही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी कही जा सकती है। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता सभी का एक कभी ना खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है और समाज वास्तव में श्रम के सहारे चलता है। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। भगत सिंह कहते हैं कि नौजवान जब भी जागे हैं, इतिहास ने करवट बदली है। सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। आज भी इस देश के शिक्षित लोगों का एक बड़ा हिस्सा भगत सिंह को एक महान वीर तो मानता है, पर वह नहीं जानता कि 23 वर्ष का वह युवा एक महान चिंतक भी था।
अभ्यास दो की यह वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे।
शहीद भगत सिंह को आज भी ज्यादातर लोग क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। यह कम ही लोगों को पता है कि वह गंभीर अध्येता ही नहीं, प्रगतिशील पत्रकार और अच्छे रचनाकार भी थे। हाल के कुछ वर्षों में कई प्रकाशकों ने भगत सिंह और उनके साथियों का साहित्य आम जनता तक पहुंचाया है। आम आदमी को उनके विचारों से अवगत कराने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे उनके प्रसिद्ध लेख, महत्वपूर्ण दस्तावेज और जेल नोटबुक आज लाखों पाठकों तक पहुंच चुके हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान सन 1924 में पंजाब में भाषा का विवाद चला था। उसके दौरान पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाए, इस प्रश्न पर उर्दू और हिंदी के पक्षधरों की एक बहस में भगत सिंह ने भी पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रतियोगिता के लिए एक लेख लिखा था, जिस पर उनको 50 रुपए का इनाम भी मिला था। भगत सिंह का वह लेख संदेश पत्रिका के हिंदी संस्करण में प्रकाशित किया गया था। उसमें भगत सिंह ने लिखा, किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ करती है। कबीर के साहित्य के कारण समाज में उनकी बातों का स्थायी प्रभाव दिख पड़ता है। यही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी कही जा सकती है। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता सभी का एक कभी ना खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है और समाज वास्तव में श्रम के सहारे चलता है। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। भगत सिंह कहते हैं कि नौजवान जब भी जागे हैं, इतिहास ने करवट बदली है। सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। आज भी इस देश के शिक्षित लोगों का
एक बड़ा हिस्सा भगत सिंह को एक महान वीर तो मानता है, पर वह नहीं जानता कि 23 वर्ष का वह युवा एक महान चिंतक भी था।
अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15।
बाल मनोवैज्ञानिक शुभा सेन के साथ युवमंच के प्रस्तुतकर्ता भानु प्रताप की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर शुभा सेन, युवमंच पर आपका स्वागत है। आपने भारत के आंगनबाड़ी कार्यक्रम और बच्चों के विकास में इसकी भूमिका पर काम किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम है क्या?
धन्यवाद भानु जी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम बच्चों के विकास की एक सर्वांगीण योजना है। इसमें बच्चों की देखभाल उनके जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और आरंभिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी प्रतिभाओं का समुचित रूप से विकास हो सके। बच्चों के साथ साथ इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल भी की जाती है।
लेकिन शुभा जी, भारत में तो करोड़ों बच्चे हैं, क्या ये योजना सब राज्यों में चलती है?
सब राज्यों में तो नहीं, लेकिन भारत के बहुत से राज्यों में चल रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी बाल विकास योजना माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 15 लाख आंगनबाड़ियां शामिल हैं।
शुभा जी, बच्चों का आरंभिक विकास क्या घरों पर नहीं होना चाहिए, जहां उन्हें माँ बाप और परिवार का स्नेह, संस्कार और परवरिश मिले? आंगनबाड़ियों की जरूरत क्या है?
भानु जी, आपने बड़ा सटीक प्रश्न किया। पहले यही माना जाता था कि बच्चों में भाषा, सामाजिक व्यवहार और समझ बूझ पैदा करने के लिए घर से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। स्कूली शिक्षा 6 वर्ष की उम्र के बाद ही शुरू होनी चाहिए, ताकि घर की परवरिश बच्चे को बाहरी दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने में सक्षम बना सके।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमने बरसों पुरानी परंपरा छोड़ दी?
बच्चों के विकास पर हो रहे मनोवैज्ञानिक शोध से कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनसे इस परंपरा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग तेजी से भाषा और जानकारी का ताना बाना बुनता है, जो आसपास के लोगों की भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से तैयार होता है। इसकी रफ्तार 3 साल की उम्र में सबसे तेज होती है और 6 साल की उम्र तक आते आते धीमी पड़ने और पक्का आकार लेने लगती है।
जीवन में आगे चलकर सीखने की क्षमता और कुशलता बचपन के इन्हीं 6 वर्षों में रखी गई बुनियाद पर निर्भर करती है।
क्या आंगनबाड़ी इस बुनियाद को और मजबूत बनाने में कोई भूमिका निभाती है?
जी हाँ, सीखने के लिए बच्चों को उनकी हरकतों पर निरंतर प्रतिक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। जिस सहजता से बच्चे एक दूसरे की निरर्थक लगने वाली हरकतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, उतनी सहजता से बड़े नहीं कर पाते। आंगनबाड़ी में बच्चों को बहुत से बच्चों के साथ संवाद करने का मौका मिलता है, जो उनके दिमागी और मानसिक विकास के लिए टॉनिक का काम करता है। संयुक्त परिवारों के टूट जाने और माता पिता दोनों के काम पर जाने के कारण आज के युग में बच्चों के लिए आंगनबाड़ियां अनिवार्य भी हो गई हैं।
लेकिन यदि परिवार संयुक्त हो और माता पिता में से एक ही काम पर जाता हो, क्या तब भी बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना चाहिए?
बाल मनोविज्ञान तो यही कहता है कि जो बच्चे 3 साल की उम्र से आंगनबाड़ी या आरंभिक स्कूलों में जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है और वे सामाजिक मेलजोल में अधिक कुशल साबित होते हैं। साथ ही आरंभिक स्कूल और आंगनबाड़ी के माहौल में बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को भी मुखर होने के अधिक अवसर मिलते हैं।
शुभा जी, इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।
अभ्यास 3 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। प्रोफेसर शुभा सेन, यू मंच पर आपका स्वागत है। आपने भारत के आंगनबाड़ी कार्यक्रम और बच्चों के विकास में इसकी भूमिका पर काम किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम है क्या?
धन्यवाद भानुजी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम बच्चों के विकास की एक सर्वांगीण योजना है। इसमें बच्चों की देखभाल उनके जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और आरंभिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उनकी प्रतिभाओं का समुचित रूप से विकास हो सके। बच्चों के साथ साथ इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल भी की जाती है।
लेकिन शुभा जी, भारत में तो करोड़ों बच्चे हैं, क्या ये योजना सब राज्यों में चलती है?
सब राज्यों में तो नहीं, लेकिन भारत के बहुत से राज्यों में चल रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी बाल विकास योजना माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 15 लाख आंगनबाड़ियां शामिल हैं।
शुभा जी, बच्चों का आरंभिक विकास क्या घरों पर नहीं होना चाहिए, जहां उन्हें माँ बाप और परिवार का स्नेह, संस्कार और परवरिश मिले? आंगनबाड़ियों की जरूरत क्या है?
भानुजी, आपने बड़ा सटीक प्रश्न किया। पहले यही माना जाता था कि बच्चों में भाषा, सामाजिक व्यवहार और समझ बूझ पैदा करने के लिए घर से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। स्कूली शिक्षा 6 वर्ष की उम्र के बाद ही शुरू होनी चाहिए, ताकि घर की परवरिश बच्चे को बाहरी दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने में सक्षम बना सके।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमने बरसों पुरानी परंपरा छोड़ दी?
बच्चों के विकास पर हो रहे मनोवैज्ञानिक शोध से कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनसे इस परंपरा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग तेजी से भाषा और जानकारी का ताना बाना बुनता है, जो आसपास के लोगों की भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से तैयार होता है। इसकी रफ्तार 3 साल की उम्र में सबसे तेज होती है और 6 साल की उम्र तक आते आते धीमी पड़ने और पक्का आकार लेने लगती है। जीवन में आगे चलकर सीखने की क्षमता और कुशलता बचपन के इन्हीं 6 वर्षों में रखी गई बुनियाद पर निर्भर करती है।
क्या आंगनबाड़ी इस बुनियाद को और मजबूत बनाने में कोई भूमिका निभाती है?
जी हाँ, सीखने के लिए बच्चों को उनकी हरकतों पर निरंतर प्रतिक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। जिस सहजता से बच्चे एक दूसरे की निरर्थक लगने वाली हरकतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, उतनी सहजता से बड़े नहीं कर पाते। आंगनबाड़ी में बच्चों को बहुत से बच्चों के साथ संवाद करने का मौका मिलता है, जो उनके दिमागी और मानसिक विकास के लिए टॉनिक का काम करता है। संयुक्त परिवारों के टूट जाने और माता पिता दोनों के काम पर जाने के कारण आज के युग में बच्चों के लिए आंगनबाड़ियां अनिवार्य भी हो गई हैं।
लेकिन यदि परिवार संयुक्त हो और माता पिता में से एक ही काम पर जाता हो, क्या तब भी बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना चाहिए?
बाल मनोविज्ञान तो यही कहता है कि जो बच्चे 3 साल की उम्र से आंगनबाड़ी या आरंभिक स्कूलों में जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है और वे सामाजिक मेलजोल में अधिक कुशल साबित होते हैं। साथ ही आरंभिक स्कूल और आंगनबाड़ी के माहौल में बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को भी मुखर होने के अधिक अवसर मिलते हैं।
शुभा जी, इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 16 से 23।
स्वतंत्रता और अनुशासन पर 2 मित्रों के विचारों को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बहस आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
भारत की परंपराओं की प्रशंसा करने वाले अक्सर हमारी पारिवारिक व्यवस्था और बड़ों के सम्मान का उदाहरण देते हैं। अपने से बड़ों के पांव पड़ना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। बड़ों की परिभाषा को कुछ ज्यादा ही फैला दिया गया है, जैसे नेताओं के पांव पड़ने वालों की भी कतारें देखी जा सकती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के यहां उनके पांव पड़ने वाले शिष्यों की कतारें लग जाती हैं। बच्चे बचपन से यही देखकर बड़े होते हैं कि बड़ों के पांव पड़ना और छोटों के कान ऐंठना स्वीकार्य बातें हैं। ताकतवर के सामने निर्बल का झुकना सामान्य बात बन जाती है।
लेकिन संसार के किसी विकसित देश से तुलना की जाए तो लगता है कि एक आम भारतीय कहीं अधिक स्वतंत्र है। यातायात, सफाई और सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखते हुए बस अपनी सुविधानुसार काम करना सामान्य सी बात है। भगदड़ में मर जाना मंजूर है, लेकिन बस हो, रेल हो, मंदिर या मजार हो, पंक्ति बनाना अपनी स्वतंत्रता को रास नहीं आता। आता भी कैसे? आजाद तबीयत वालों ने उन्हें यह सिखाया ही नहीं, और वे सिखाते भी कैसे जब उन्हें खुद भी यह रास आया ही नहीं।
वास्तव में इस तरह की इच्छानुसार काम करने की छूट को स्वच्छंदता कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि स्वच्छंदता सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती है, जबकि स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति। प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का मात्र एक पहलू है, इसकी विशेषता नहीं, जबकि स्वतंत्रता ऐसी अवस्था है जिसमें आपको नियमानुसार विकल्प चुनने की छूट होती है। कोई भी व्यक्ति अपने हितों की सुचारू रूप से रक्षा तभी कर पाता है जब वह प्रतिबंधों के भार से मुक्त हो, तभी वह अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय कर पाता है। इसलिए स्वतंत्रता का अनुशासित होना बेहद जरूरी है।
इसलिए आज के अध्यापकों का कर्तव्य बालकों को आतंकित करने के बजाय उनमें स्वस्थ आदतों का निर्माण करना है। अनुशासन का नया अर्थ है छात्रों को एक जनतांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का ध्येय व्यक्ति के ज्ञान, शक्ति, आदतों, रुचियों और आदर्शों को, यानी उसके व्यक्तित्व को, उसके मित्रों तथा संपूर्ण समाज की भलाई के लिए तैयार करना है। शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासन बनाए रखने में कामयाब बने। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इन दोनों का जीवन में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि वह बालक के व्यक्तित्व के विकास में रुकावट ना बने।
स्वतंत्रता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे लोग कम ही हैं जो इस बात को समझते हैं कि उनकी स्वतंत्रता उनके सहनागरिकों की स्वतंत्रता का आदर करने पर निर्भर करती है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता वही है जो अपने सहनागरिक की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए नागरिकों के व्यक्तिगत प्रयास के साथ एक अन्य तत्व भी आवश्यक है, और वह है मजबूत शासन व्यवस्था। सामान्य अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक सभी को अपराध की कल्पना करने से पहले ही दंड के भय का पता हो, तभी सब नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है।
निजी स्वतंत्रता का हमारे समाज, उसकी परंपरा और संस्कृति, उसके आचार विचार और समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता से विरोध नहीं होता, बल्कि वह उसकी निहित शक्ति होती है। खुले आकाश में उड़ती पतंग कितनी स्वतंत्रता से विचरण करती है, लेकिन कभी सोचा है कि उसकी आजादी भरी उड़ान को दिशा और सहारा देने वाली डोर कट जाए तो क्या होता है? पतंग कट जाती है, फिर ना उसकी उड़ान रहती है, ना ही उसका अस्तित्व। हमारी स्वतंत्रता हमें ऊपर उठाती है, परंतु यह तभी तक सुरक्षित है जब तक हम कर्तव्य की डोर से बंधे हैं।
अभ्यास चार की इस बहस को अब आप फिर से सुनेंगे। भारत की परंपराओं की प्रशंसा करने वाले अक्सर हमारी पारिवारिक व्यवस्था और बड़ों के सम्मान का उदाहरण देते हैं। अपने से बड़ों के पांव पड़ना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। बड़ों की परिभाषा को कुछ ज्यादा ही फैला दिया गया है, जैसे नेताओं के पांव पड़ने वालों की भी कतारें देखी जा सकती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के यहां उनके पांव पड़ने वाले शिष्यों की कतारें लग जाती हैं। बच्चे बचपन से यही देखकर बड़े होते हैं कि बड़ों के पांव पड़ना और छोटों के कान ऐंठना स्वीकार्य बातें हैं। ताकतवर के सामने निर्बल का झुकना सामान्य बात बन जाती है।
लेकिन संसार के किसी विकसित देश से तुलना की जाए तो लगता है कि एक आम भारतीय कहीं अधिक स्वतंत्र है। यातायात, सफाई और सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखते हुए बस अपनी सुविधानुसार काम करना सामान्य सी बात है। भगदड़ में मर जाना मंजूर है, लेकिन बस हो, रेल हो, मंदिर या मजार हो, पंक्ति बनाना अपनी स्वतंत्रता को रास नहीं आता। आता भी कैसे? आजाद तबीयत वालों ने उन्हें ये सिखाया ही नहीं, और वे सिखाते भी कैसे जब उन्हें खुद भी ये रास आया ही नहीं।
वास्तव में इस तरह की इच्छानुसार काम करने की छूट को स्वच्छंदता कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि स्वच्छंदता सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती है, जबकि स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति। प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का मात्र एक पहलू है, इसकी विशेषता नहीं, जबकि स्वतंत्रता ऐसी अवस्था है जिसमें आपको नियमानुसार विकल्प चुनने की छूट होती है। कोई भी व्यक्ति अपने हितों की सुचारू रूप से रक्षा तभी कर पाता है जब वह प्रतिबंधों के भार से मुक्त हो, तभी वह अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय कर पाता है। इसलिए स्वतंत्रता का अनुशासित होना बेहद जरूरी है।
इसलिए आज के अध्यापकों का कर्तव्य बालकों को आतंकित करने के बजाय उनमें स्वस्थ आदतों का निर्माण करना है। अनुशासन का नया अर्थ है छात्रों को एक जनतांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का ध्येय व्यक्ति के ज्ञान, शक्ति, आदतों, रुचियों और आदर्शों को, यानी उसके व्यक्तित्व को, उसके मित्रों तथा संपूर्ण समाज की भलाई के लिए तैयार करना है। शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासन बनाए रखने में कामयाब बने। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इन दोनों का जीवन में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि वह बालक के व्यक्तित्व के विकास में रुकावट ना बने।
स्वतंत्रता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे लोग कम ही हैं जो इस बात को समझते हैं कि उनकी स्वतंत्रता उनके सहनागरिकों की स्वतंत्रता का आदर करने पर निर्भर करती है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता वही है जो अपने सहनागरिक की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए नागरिकों के व्यक्तिगत प्रयास के साथ एक अन्य तत्व भी आवश्यक है, और वह है मजबूत शासन व्यवस्था। सामान्य अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक सभी को अपराध की कल्पना करने से पहले ही दंड के भय का पता हो, तभी सब नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है।
निजी स्वतंत्रता का हमारे समाज, उसकी परंपरा और संस्कृति, उसके आचार विचार और समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता से विरोध नहीं होता, बल्कि वह उसकी निहित शक्ति होती है। खुले आकाश में उड़ती पतंग कितनी स्वतंत्रता से विचरण करती है, लेकिन कभी सोचा है कि उसकी आजादी भरी उड़ान को दिशा और सहारा देने वाली डोर कट जाए तो क्या होता है?
पतंग कट जाती है, फिर ना उसकी उड़ान रहती है ना ही उसका अस्तित्व।
हमारी स्वतंत्रता हमें ऊपर उठाती है, परंतु यह तभी तक सुरक्षित है जब तक हम कर्तव्य की डोर से बंधे हैं। अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.